आज की जो हमारी शीट है इसमें सबसे पहले हम आज की आयते तदब्बुर है, अभी आने वाली है हमारे सबक में, ये सारी चीज़ें फिर एडिटिंग में जिधर भी एडजस्ट होंगी कर देंगे ये लोग। लेकिन आप देखिए कि हर दिन अगर हम एक आयत पे गौर करें तो आज की आयत जो हमारे टाइम मैनेजमेंट के थीम से है वो आयत नंबर 185 185 आल इमरान, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौती व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुख़्ज़िहा नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर जान को मौत का जायका चखना है, इस जान के नीचे अपना नाम लिखिए। कितना मुश्किल अपना नाम मौत के साथ रखना, सोचे जरा कब आएगी मौत, कहाँ आएगी, सफर में आएगी, हजर में आएगी, घर में मरूंगी, रास्तों में मरूंगी, लेकिन आनी जरूर है, किसी को इससे मफर नहीं है। दुआ करें कि अल्लाह हमें अपने रास्तों में मौत दे, शहादत की मौत दे। उसके बाद और तुमको पूरी पादाश तुम्हारी कयामत ही के रोज मिलेगी, यानी जो कर रहे हो दुनिया में वो मिलेगा। इन नमा तुवफ़ौ ना उजूरा को, ये है हमारे पास आज की सोच। अल्लाह के रास्ते में देना उसको आसान लगता है जिसको यकीन है कि पूरे का पूरा वापस मिलेगा। अल्लाह के रास्ते की भाग दौड़ उसको आसान लगती है जिसको इन नमा तुवफ़ौ ना उजूरकुम का यकीन होता है। सब्र करना, तकवा इख्तियार करना, मुखालफतों के बावजूद जुड़े रहना, गिरोह के साथ मिलकर काम करना, गम के मौके पे थामे रखना, शिकस्त को खुशी से अपनाना, ये सब कुछ जो हम इस बारे में पढ़ रहे हैं ये सब आसान कब होता है? जब यकीन होता है कि इन नमा तुवफ़ौ ना उजूरकुम, कि कोई बात नहीं, अगर आज जरा सी मुश्किल भी आ गई है तो इसका अजर भी तो मिलेगा। फिर आगे फरमाया फमन जुख जिहानी नारी बोध खिलल जन्नत फकत फाज, जो दोजख की आग से बचा कर जन्नत में दाखिल किया गया वही कामयाब है। याद रखिए कि हमारी मंजिल जन्नत नहीं है, दोजख से बच के जन्नत में जाना। कुछ लोग हैं वो दोजख में गिराए जाएंगे फिर जन्नत में भेजे जाएंगे। हम कहते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नुम को बाईपास करके जन्नत में दाखिल कर दे। बड़ी रुसवाई और शर्मिंदगी की बात होगी कि जब मुसलमान हो और कुछ अरसे के लिए सही जहन्नुम में गिराए जाएं सिर्फ इसलिए कि उनके नामे अमाल में कुछ गलत चीज़ें, कुछ हराम चीज़ें थी। अल्लाह ताला हमें दुनिया में बचा दें। और उसके बाद कामयाबी का असल मरहला फ़क़द फ़ाज़। दुनिया में छोटी छोटी कामयाबियों को हम बहुत कुछ समझते हैं लेकिन असल कामयाबी उसकी है जो दोजख में जाने से बचा लिया गया। यही फिक्र हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को थी कि जिन्होंने कहा कि अगर मैं दोजख में गिराए जाने से बच गया, पुल सरात से एहतियात से गुजर गया तो मुझे कोई परवाह नहीं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, और अगर मैं बचा नहीं फंस गया तो सबको हक पहुंचता है कि वो मुझे बुरा भला कहें। रह गई ये दुनिया मेरी आपकी जिसको हम मैनेज करने की कोशिशों में हैं, तो इसकी असल वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये सिर्फ धोखे का सामान है। आप और मैं धोखे में जी रहे हैं, आपको पता है ये असली जगह नहीं है, ये रिश्ते असली नहीं है, ये गम असली नहीं है, ये खुशियाँ असली नहीं है। दुआ कीजिए कि हमें हकीकी चीज़ के लिए कोशिश करने वाला बना दें। आज की हदीस, चूँकि आज के सबक में हमने सुबह जल्दी उठने पे बात की, तो आज की हदीस क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी मुसलमान सोता है इस पर गिरहें लग जाती हैं, वो बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरह खुल जाती है, अगर वो नमाज के लिए उठता है तो वो चाको चौबंद होकर सुबह करता है, इसने भलाई हासिल कर ली होती है, इसकी तमाम गिरें खुल चुकी होती हैं, अगर वो ऐसी हालत में सुबह करता है कि अल्लाह का जिक्र नहीं करता इसकी सब गिरहें लगी हुई होती हैं, वो बोझल जहन के साथ काहली के आलम में सुबह करता है इसे भलाई नसीब नहीं होती। तो याद रखिए सुबह का उठना, वक्त पे नमाज का अदा करना जहन को शैतानी गिरहों से आज़ाद कर देता है। आज की दुआ सूरत आल इमरान की आयत नंबर 8, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। हिदायत को बहुत कीमती मोती समझिए और इसके लिए दुआ कीजिए। और दूसरी दुआ आल इमरान 16, रब्बना इन्नना मन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए, बस आप हमारे गुनाहों को माफ़ कीजिए और हमको दोजख से बचाइए। और आज का वक्त का एक बेहतरीन इस्तेमाल किया था, सुबह के वक्त को इस्तेमाल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे बातें की। अगली चीज़, वक्त ज़ाया करने वाले काम, टाइम वेस्टर, गम ना करें। गम आपकी ज़िंदगी को घुला देगा। अपने आप को खुश रखें, और खुशी में जो काम होते हैं वो गम की कैफियत में होते नहीं। और आज के पारे की काबिले तकलीद शख्सियत, पर्सनैलिटीज़ असहाबे हमराउल असद हैं। अभी आयतें आएंगी, इंशाल्लाह आपको इनसे मिलाएंगे। क्या लोग थे कि जिन्होंने वाकई लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून का हक अदा कर दिया। अल्लाह ताला हमें उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाला बना दे। अब कंटिन्यू करेंगे तर्जमा। अब आगे गज़वे उहद के नाते से अल्लाह ताला ने एक बड़ा प्यारा समली नमूना बताया। इस वक्त अगर तुम्हें चोट लगी है, तो इससे पहले ऐसी ही चोट तुम्हारे फरीके मुखालिफ को भी लग चुकी है। ये तो ज़माने के नशेबो फराज हैं, जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं। तुम पर यह वक्त इसलिए लाया गया कि अल्लाह देखना चाहता था कि तुम में से सच्चे मोमिन कौन है, और इन लोगों को छांट लेना चाहता था जो वाकई रास्ती के गवाह हैं। यानी क्यों फिक्र करते हो कि उहद में शिकस्त हो गई? इस शिकस्त से भी बहुत बड़ी खैर फूटेगी। और साथ ही ये भी फरमा दिया कि तुम्हें अल्लाह ताला इन सारी चीजों से अलग क्यों करता है? क्योंकि जालिम लोग अल्लाह को पसंद नहीं, और वो इस आजमाइश के जरिए से मोमिनों को अलग छांट कर काफिरों की सरकूबी कर देना चाहता था। क्या तुमने ये समझ रखा कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे? हाईलाइट कीजिएगा, जरा सा गौर करने की जरूरत है इस आयत पे। क्या तुम ऐसी ख्वाहिशों से और बस तमन्नाओं से जन्नत में जाओगे? नहीं, हालांकि अभी तो अल्लाह ने ये देखा ही नहीं कि तुम में से वो कौन लोग हैं जो इसकी राह में जाने लड़ाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। और इसकी खातिर सब्र करने वाले हैं। तुम तो मौत की तमन्नाएं कर रहे थे, मगर ये उस वक्त की बात थी जब मौत सामने ना आई थी। लो, अब ये तो तुम्हारे सामने आ गई और तुमने इसे आंखों से देख लिया। वमा मोहम्मद निल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहिर रसुल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ नहीं, बस एक रसूल हैं। इनसे पहले और रसूल भी गुजर चुके हैं। फिर क्या अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं, तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का नुकसान न करेगा। अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे, इन्हें वो इसकी जजा देगा। उहद के मैदान में जब भगदड़ मची कुछ लोगों की गलती की वजह से, तो ऐसी भगदड़ हुई कि सहाबी रसूल मुसअब बिन उमैर को किसी ने कत्ल किया। उनकी डेड बॉडी को देखकर कुछ लोगों को लगा कि ये नफ्से सल्लम है। वैसे भी भगदड़ होती है और थोड़ी सी बात ज्यादा बन जाती है। जब ये खबर फैली कि नफ्से सल्लम तो शहीद कर दिए गए, तो लोग तीन गिरोहों में बट गए। कुछ ने तो कहा कि ओह, ये तो नबी होते, अच्छे लीडर होते, तो फिर तो ये कभी ना मरते, चलो वापस अपने पुराने दोस्तों और साथियों के पास। वो तो अबू सुफियान के पास जाकर पनाह लेने की ख्वाहिश में चले गए। कुछ लोग थे, उन्होंने कहा, जिस बात पे नबी ने जान दी है, फिर हम अपनी जान को क्यों छोड़ें? हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे। कुछ बीच की राह वाले लोग थे। याद रखिए, इस वाक्य से अल्लाह ताला ने ये सिखा दिया, शख्सियात को देख कर काम करने वाले कभी दीन के लिए काम नहीं करते। जो किसी के होने पे काम करें और किसी के ना होने पे काम करें, वो ये सबूत दे रहे हैं कि वो अल हय और अल कय्यूम के लिए नहीं करते। ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कुछ लोगों का। मसलन किसी जगह आप जाते हैं, काम करते हैं, अब आपको वहां से किसी मजबूरी में वापस आना पड़ता है। लोग कहते हैं, आप चले गए, दिल ही नहीं लगता, आपके बगैर मजा ही नहीं आता, सुकून नहीं, अब हम नहीं कर रहे, चले अब हम कहीं और जाते हैं जहां कोई बैठ के पढ़ा रहा है। ऐसे लोग सिर्फ टेस्ट कॉन्शियस होते हैं। आपको मुझे दवा चाहिए, हम कभी नहीं कहते कि जिसने वो दवा बनाई वो हमारे पास हो। कोई डॉक्टर हमें वो दवा नुस्खे के साथ दे दे, हम लेके आ जाते हैं। हिदायत की तलब वाले शख्सियात में नहीं उलझते। ठीक है, इंसानों से मोहब्बत होती है, माँ बाप घर में नहीं होते, दिल नहीं लगता, लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब कि वो मकसद छोड़ दिया जाए। दीन का काम इसलिए भी बहुत हसास है कि ये किसी के होने या ना होने से रुकता नहीं है। फिर इसके बाद आगे फरमाया, कोई जीरू अल्लाह की इज्जत के बगैर मर नहीं सकता। मौत का वक्त तो लिखा हुआ है। जो शख्स सवाबे दुनिया के इरादे से काम करेगा, इसको हम दुनिया ही में देंगे, और जो सवाबे आखिरत के इरादे से काम करेगा, वो आखिरत का सवाब पाएगा, और शुक्र करने वालों को हम इनकी जजा जरूर देंगे। नोट कीजिए, शुक्रगुजारों को जजा मिलेगी। और शुक्रगुजार कौन होते हैं? जो हर किस्म के हालात में जमे रहते हैं। इससे पहले कितने ही नबी ऐसे गुजरे जिनके साथ मिलकर बहुत से खुदा परस्तों ने जंग की। अल्लाह की राह में जो मुसीबतें इन पर पड़ी, इनसे वो दिल शिकस्ता नहीं हुए। इसको हाईलाइट कीजिए। نبیوں کے ساتھیوں میں جو خوبیاں تھیں، آج امت کو انہی خوبیوں کی ضرورت ہے. ہر وہ بندہ جس کو دین کا کام کرنے کا شوق ہے، جو خادم دین بننا چاہتا ہے، وہ اپنے لیے ادھر سے چیک لسٹ پوری کر لے. پہلے تو اس سے پتہ چلتا ہے ہر نبی کو ساتھیوں کی ضرورت تھی. اکیلے کسی نبی نے بھی دین کا کام نہیں کیا، آج میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر دوسری بات، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں، ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سر نگو نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. آج میرے آپ کے لیے ادھر بھی تزکیہ کا نقطہ ہے. کیا ہم دین کی وجہ سے کوئی مشکل آئے تو دل شکستہ ہو جاتے ہیں، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ہم باطل کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں؟ کیسے؟ اپنے دین پہ عمل کرنا چھوڑ کر. اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اور جب کام اپنے ہاتھ میں نہ رہے نا، تو پھر دعائیں مانگیں. ان کے اوپر بہت دفعہ درس بھی دیے اور یہ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں، کیونکہ آج کے دور میں بہت بڑا امت مسلمہ کا مسئلہ کیا ہے کہ باہر سے فتنہ بعد میں آتا ہے، اندر سے ایمان پہلے ہلا ہوتا ہے. تو کبھی بھی کہیں اسلام کے نام پر کوئی روک ٹوک، کوئی پریشانی ہو، تو یہ دعا یاد کر لیجئے. وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے. کیا پتہ چلا اللہ کے کاموں میں بھی کمی بیشیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی معافیاں انسان مانگتا رہے. ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. اللہ سے مدد مانگے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیسری دعا آ رہی ہے کہ جس میں قدموں کے جمانے اور کفار پہ غلبے کی باتیں. پہلے بارے میں بھی آپ نے سورہ بقرہ کینڈ پہ پڑھی تھی. تو کیا پتہ چلا کہ دعائیں بہت بڑا سہارا ہوتی ہیں. آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اور اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں ڈال دیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. ان کی باتیں غلط ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرا دیا. جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی بھی سنت نہیں نازل کی، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری قیامگاہ ہے، اور وہ بہت بری ہے جو قیامگاہ ان ظالموں کو نصیب ہوگی. باقی دوبارہ پھر میدان احد کی طرف اشارہ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا، اللہ نے تائید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. دعا کیجیے اللہ آج بھی ہم سے وعدے کیے ہوئے پورے کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کردار میں ڈھال دے کہ جہاں اللہ کی مدد آتی ہے. ابتدا میں تو اس کے حکم سے تم ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا. ہائی لائٹ کریں، دین کا کام کرنے والوں میں جب کمزوری آ جاتی ہے اور باہم اختلاف ہو جاتا ہے، اور تیسری چیز، اور جو ہی کہ وہ چیز جو اللہ نے تم کو دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کی حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے. چوتھا جرم، یاد رکھیے، بہترین ٹیم ورک کیا ہوتا ہے جس میں عقل استعمال نہ کی جائے بلکہ اس چیز کو سمجھا جائے جو سب کے اجتماعی فائدے کی ہے. اس وقت پہ جن لوگوں نے تھوڑا سا سوچا وہ دین سے نکل گئے، بھگدڑ مچ گئی. کئی لوگ تو ابو سفیان کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے او نہیں نہیں سوری، ہم تمہیں چھوڑ کر اس شخص کے پیچھے لگ گئے تھے، دیکھو یہ تو خود شہید ہو گیا ہے، اب یہ کوئی سچا نبی ہوتا تو اتنی بھگدڑیں کیوں مچتی. لوگ فوراً ججمنٹل کمنٹس دینے لگتے ہیں. یاد رکھیے، جب کامیابیاں ملتی ہیں نا کسی کو بھی، بہت خطرہ ہوتا ہے، ہر طرف تعریفیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ تعریف کے لیے کام کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. سب سے مشکل کام وہ ہے جس میں آپ کو کوئی کامیابی نہیں ہو رہی پھر بھی لگے ہوئے. حضرت نو 950 سال تک جمے رہے، کامیابیاں ہوئیں؟ لوگ کہتے ہیں ہائے ہمارا موٹیویشن لوز ہو جاتا ہے. اچھا کوئی طریقہ بتائیں، اچھا آپ کیسے موٹیویٹڈ رہتے ہیں؟ بھائی موٹیویشن کا سیدھا سا طریقہ ہے، اللہ کے لیے کرو. فائدہ ہو رہا ہے بندوں کو؟ اللہ کے بندے نہیں ہو رہا، نہ صرف مجھے فائدہ ہو رہا ہے. جس بندے نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کیا وہ کبھی ڈی موٹیویٹڈ نہیں ہوگا. اگر آپ بات بات پہ ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ ایمان دے دے جو ہمیں مشکل میں بھی جما کے رکھے. और एक सबसे बड़ी बात हुब्बे माल थी। फिर फरमाया इसलिए कि तुम में से कुछ लोग दुनिया के तालिब थे और कुछ आखरत की ख्वाहिश रखते थे, तब अल्लाह ने तुम्हें काफरों के मुकाबले में पसवा कर दिया। आज आपको उम्मत मुस्लिमा के सवाल की बातें भी समझ आ रही हैं। जब मुसलमान भी उसी माल के पीछे भागने लगे जिसके पीछे गैर मुस्लिम भागता है, तो फिर आप देख लीजिए कि अल्लाह दिलों से रोब दूर कर देता है। और ऐसा क्यों किया? ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। और हक ये है, यानी सच बात ये है कि अल्लाह ने तुम्हें फिर भी माफ़ी कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला मोमिनों पर बड़ी नजर इनायत रखता है। आप देखिए, अल्लाह से बड़ा वसफ़ किसी का नहीं है, अल्लाह से ज़्यादा कोई किसी को माफ़ नहीं करता। जैसे एक माँ अपने बच्चे की दसियों बातें एक दिन में माफ़ करती है, फिर उसको डांटेगी, 10 दफ़ा कहेगी अब नहीं बोलूँगी, फिर बोलती है, अल्लाह तो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बस करते रहें और डरते रहें, लाड भी दिखाएं, प्यार भी करें, लेकिन अगर अल्लाह ताला के साथ कोई ताल्लुक ना महसूस हो और बिल्कुल उखड़े उखड़े रहें, नमाज भी पढ़ी तो गुस्से में ही पढ़ ली, क्या मुश्किल है एक दिन में 5 नमाजें रखने की, तो याद रखिए फिर वो इबादत की रूह नहीं है। अब इसके बाद जो मंजर है ना, वो बिल्कुल वो है जिसको अगर आज आंखों से देखें तो उम्मत मुस्लिमा की भी हालत कुछ ऐसी है कि मैदाने उहद में जब भगदड़ मची थी, पीछे से नबी सल्लम बुला रहे थे। जरा से इसको तसव्वुर की आंख से देखिएगा, इस तुसिदून वला तलवून अला अहदिम, याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, किसी की तरफ पलट कर देखने तक का होश तुम्हें ना था, और रसूल तुम्हारे पीछे तुमको पुकार रहे थे। इस वक्त तुम्हारी इस रविश का बदला अल्लाह ने तुम्हें ये दिया कि तुमको रंज पर रंज दिए, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें ये सबक मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से छूट जाए या जो मुसीबत तुम पर नाजिल हो, इस पर मलूल ना हो, यानी दिल मेला ना करो, अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। आप देख लीजिए ग्रीफ मैनेजमेंट, गम को कैसे हैंडल करें, अल्लाह ताला ये सिखा रहे हैं, और प्रैक्टिकली वहाँ ये हो रहा था। आज उम्मत का हाल देखिए, नबी पीछे से पुकारता है, नबी की सुन्नतें पुकारती हैं, नबी की हदीसें हमारे पांव पकड़ती हैं, लेकिन हम भाग टूट एक दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए आज हमें कठपुतली बने हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। इस गम की हालत में भी कुछ लोग कैसे थे जिसकी अब यहाँ बात की गई, अमना, इस गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी हालत तारी कर दी कि वो ऊँघने लगे। मैदान जंग है, तलवारों में है और ऊँघ रहे, ऊँघ का बात ही है जब बंदा मुतमईन होता है। हदीस में आता है कि नमाज में ऊँघ शैतान की तरफ से है, क्योंकि वो चाहता है कि हम नमाज अच्छी ना पढ़ें, लेकिन मैदान जंग में ऊँघ जो आती है ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह सुला देता है। अल्लाह कहते एक नैप ले लो, कभी बहुत कोई दुखी हो ना उसको सुला दें, क्योंकि जब गम पड़ता है और उसके बाद कोई सो जाए ना तो उसका गम दूर हो जाता है। कभी आपने भी देखा होगा कोई सदमा आया तो बहुत ही कोई रोध हो रहा है तो लोग कहते हैं नहीं थोड़ी देर सो जाओ सो जाओ, तो अल्लाह सुला देता है। और ये अंदर के गहरे इत्मीनान की बात है कि मैदान जंग में भी आप सो रहे हैं। सहाबा पे एक बार दफा जंगों में ऐसी कैफियत होती थी कि वो कहते हैं हम ऐसे सो रहे होते थे कि हमारे हाथ से तलवारें गिर रही होती थी। अंदर खरा होता है ना तो फिर गमों तकलीफों में भी आपका दिल कम अज कम मुतमईन होता है। अब ये जरा अगला गिरोह सुनिएगा कि जिसकी असल वजह फिर वही बात थी कि अपनी जात, कौन सा? मगर एक दूसरा गिरोह जिसके लिए सारी अहमियत बस अपनी ही जात की थी, यानी उनको इस्लाम से दीन से कोई इतना सरोकार नहीं था जितना अपनी जान से था। उनका हाल क्या था? अल्लाह के मुतालिक तरह तरह के जाहिलाना गुमान करने लगा। क्या कि लो जी अपने रास्तों में बुला के अल्लाह ने अब हमें इतनी मुश्किलों में डाल दिया। याद रखिए बाज लोग इंसानों से नहीं अल्लाह से भी लड़े हुए होते हैं, वो अल्लाह से भी बदगुमान होते हैं। और कौन से गुमान थे? जो सरासर खिलाफ हक थे। ये लोग अब कहते हैं इस काम के चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है। ये अब अब्दुल्ला बिन उबई की पार्टी जैसे लोग कहते थे हमसे मशवरा तो लेते हैं मानते नहीं है, कोई कहता हमसे लेते ही नहीं है। अब यहाँ नबी सल्लम से कह रहे हैं भाई ये जो जंग करने आए थे कोई हमारा भी मशवरा आपने माना? इनसे कहो किसी का कोई हिस्सा नहीं, इस काम के सारे इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। सिर्फ इस बात को बुनियाद बना के अब्दुल्ला बिन उबई ऐन खतरे के वक्त पे मुसलमानों को छोड़ के अलग हो गया था। याद रखिए बहुत सारे लोगों का निफाक खुलता ही तब है जब अमली तकाजे सामने आते हैं। अगर ओहद ना होती तो किसी को कानो कान खबर नहीं होनी थी कि अब्दुल्ला बिन उबई के दिल में निफाक का कीड़ा है, उसको खुद भी पता नहीं होना था। अगर आपको अपनी राय के इख्तलाफ का डर था तो आप निकलते ही क्यों? निकले थे साथ, उस वक्त भी तो राय नहीं मानी थी, लेकिन जब देखा कि या तो अब जान देनी पड़ेगी तो वो पुरानी बात बुनियाद बनाकर पीछे कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, दरअसल ये लोग अपने दिलों में जो बात छुपाए हुए हैं इसे तुम पर जाहिर नहीं करते। इनका असल मतलब ये है कि अगर क़यादत के अख्तियारात में हमारा कुछ हिस्सा होता तो यहाँ हम ना मारे जाते। देखिए लीडरशिप का शौक हमें बड़ा बनाए, हम अंदर नहीं रह सकते, दब नहीं सकते। याद रखिए जब तक हम अकेले इबादत करते हैं ना हम छुपे रहते हैं। फजर के लिए आप उठे नो प्रॉब्लम, जोहर के लिए उठे इट्स ओके, आप रोज़ा रखे कोई नहीं, आप वजीफों की पूरी किताब पढ़ लें इट्स ओके। आम हालात में हमें खुद भी अपनी खामियों खूबियों का नहीं पता चलता। जब अब किसी के साथ मिलकर काम करते हैं और किसी के अंडर काम करते हैं तब असल पोल खुलता है। आपको खुद अपनी डिस्कवरी होती है कि अल्लाह मैं ऐसी कोटी हूँ, मुझे तो नहीं तुझे पता। तब आपको पता चलता है आप कितने गुस्से वाले हैं, तब पता चलता है आपके दिल में गुस्सा आ जाए तो वो जाता ही नहीं है, आप कितने सख्त दिल हैं। तो ये सारी उनकी बातें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन उबई का असल में इशू नबी सल्लम के साथ था। कहता था कि मुझे सरदार बनाए, इसकी सरदारी की तैयारियां थी, इतने में अल्लाह के नबी मदीना में आ गए। तो ये ना चाहते हुए भी हर वक्त नबी सल्लम से खुद को रिलेट करता था। तो यही बातें यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि असल मसला कुछ और था इसके दिल में जो नबी सल्लम को भी नहीं पता चलता था। और रह गई मौत, तो इनसे कह दो अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वो खुद अपनी कत्लगाहों की तरफ निकल आते। और ये मामला जो पेश आया ये तो इसलिए आया कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में पोशीदा है अल्लाह इसे आजमा ले, और जो खोट तुम्हारे दिलों में इसे छांट दे, अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है। आप देखिए कि ये जंगों का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी होता है, खोटे लोगों से इस्लाम को पाक कर दे, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर देता अल्लाह ताला मैदान जंग में बुलाकर। तुम में से जो लोग मुकाबले के दिन पीठ फेर गए थे उनकी इस लग्जिश का सबब ये था कि इनकी बाज कमजोरियों की वजह से शैतान ने इनके कदम डगमगा दिए। हाईलाइट करें, बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ तो बस ऐसे ही गुजर है, कभी आप इन दो रुकों की तफसीर सुन के देखें, आज की उम्मत मुस्लिमा के हर मसले का हल आपको इसमें दिखेगा और वजह भी दिख रही है। यहाँ बस इतनी सी बात समझ लें कि बाज दफा इंसान दीन के रास्ते से डगमगाता क्यों है, किसी गुनाह की वजह से। कोई कमजोरी होती है अंदर, होती है कोई किरदार में कोई कमी होती है, छुपी होती है लेकिन नेकी छुटती है। जैसे एक सहाबी थे, एक दिन उनकी तहज्जुद छुट गई तो सुबह उठ के रोने लगे, कहने लगे ऐ खुदा मुझे दिखा मेरा कौन सा गुनाह है जिसने मुझसे तहज्जुद छुड़वा दी। तो याद रखिए महरूमी हो जाती है बंदे की बहुत बड़ी बड़ी नेकियों से किसी एक गुनाह की वजह से, लेकिन अल्लाह प्यार करता है, अल्लाह ने इनको फिर माफ़ कर दिया। अल्लाह तो हमें भी माफ़ कर दे, हमारी छोटी बड़ी लग्जिशों को माफ़ कर दे। और अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो काफिरों की सी बातें ना करो, उनके स्टाइल ना इख्तियार करो, उनके बोले हुए लफ्ज़ ना दोहराओ, क्योंकि जो दुश्मन होता है ना उसकी बोली भी अच्छी नहीं लगती, उसकी बातचीत भी नहीं अच्छी लगती। साफ आयत है कैसे तौर तरीके यानी जिसमें काफिराना हुआ है मुसलमानों को इख्तियार नहीं करने चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बि कौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम की तशबीह इख्तियार की वो उन्हीं में से है। और उनकी बातों में से एक बात जिसका यहाँ जिक्र है नोट कीजिएगा, वो कैसी बातें करते थे, जिनके अजीज व अकारिब अगर कभी सफर पर जाते हैं या जंग में शरीक होते हैं और वहाँ किसी हादसे से दो चार हो जाते हैं तो वो कहते हैं अगर वो हमारे पास होते तो ना मारे जाते ना कत्ल होते। ये अगर का लफ्ज़ हदीस में आता है कि अगर का लफ्ज़ शैतान का दरवाज़ा खोल देता है। कुछ लोग जो होते हैं ना वो अगर मगर करते हैं, अगर इधर रिश्ता ना करते कितना अच्छा होता, अगर इधर कारोबार ना करते, ये घर ना खरीदते। देखिए मोमिन को अल्लाह ने तरीका दिया, आगे इसी में आएगा इंशाल्लाह वो भी बात। पहले खूब सोचे, आपस में मशावरत करें, दूसरों से मशवरा लें, फिर इस्तखारा करें, अल्लाह से खैर तलब करें, उसके बाद फाइजम तफ तवक्कल अल्लाह, अजम के साथ जब कोई काम कर दें आप उसका नतीजा अच्छा निकले उसका बुरा निकले अगर ना कहें। आज अब देखिए हर रिश्ते के बाद मैंने देखा कुछ महीने बाद लोग कह रहते हैं काश इधर इधर रिश्ता ना करते, काश इन लोगों से वास्ता नहीं पड़ता। पहले से सोच के रखो तो काश नहीं कहना चाहिए, असल में इसके अंदर ये बात है, वरना इससे हसरत और गम आता है दिल में। वरना दरअसल मारने और ज़िंदा करने वाला तो अल्लाह ही है और तुम्हारी तमाम हरकत पर वही निगरान है। अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो रहमत और बख्शिश तुम्हारे हिस्से में आएगी वो इन सारी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है जिन्हें ये लोग जमा करते हैं। क्यों रोते हो? वो कहते हैं ना कि शोहदा का गम हम मनाया नहीं करते, शहीद होना कोई गम है? शहादत है मतलूब है मकसूद है मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। तो कहा क्या हुआ अगर 70 मारे गए, तुम क्यों रो रहे हो? बिलीव मी, गज़वा उहद आज की उम्मत के लिए एक बिल्कुल चेकलिस्ट है। 70 लोग घरों में मरे हुए पड़े हुए हैं और सरदार थे, और जिसमें मुसअब बिन उमैर, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हो, नबी का चचा भी, आपका दूसरी भाई भी है, आपका हम उम्र भी है। लेकिन इसके बावजूद देखिए कितनी पॉजिटिव बातें की जा रही हैं कि गम मनाते रहोगे, अब गम में आके दूसरे काम छोड़ दो। हमारे खुदा न खास्ता एक गम हो जाए, हम एक महीने की छुट्टी पर पहुँच जाते हैं, हम कहते नहीं अभी हम मना रहे हैं, अभी कमर टूट गई, अभी हौसला नहीं रहा। अल्लाह ना किसी गम में आपको मुझे डाले, जब पढ़ दे उस गम का इलाज फिर यही किताब है। इधर पहुंच जाए, यहाँ बैठ के रो लें धो लें, आप देखिएगा आपको याद ही नहीं रहेगा कितनी बुरी खबर सुन के आई हूँ, इतना बड़ा सदमा पड़ा है, इतनी बड़ी चोट पड़ी है। और जब मनाने पे आते हैं तो फिर तकलीफ भी उतनी ही ज़्यादा होती है। अल्लाह ताला आपको मुझे गमों और तकलीफ़ों से और सदमों से बचा के रखे। अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो रहमत और बख्शिश तुम्हारे हिस्से में आएगी वो इन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें ये लोग जमा कर रहे हैं। और ख्वाह तुम मरो या मारे जाओ, बहर हाल तुम सबको सिमट कर अल्लाह की तरफ आना है।